हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 41 से प्रारंभ करेंगे और आज इस अध्याय को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणं भुजासव महत्तमान्ते हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णा युतमेश मे वर। जिह्वानवकति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च नास्मार्ति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यच्छिरैकदापि तानानयत्ममसतो अकृतवेषु कृत्या। तस्मात् संकीर्तनं विष्णु जगन्मंगलमोहसा महत्तामपि कौरव्य विद्यैकान्तिकनिष्कृत। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखनचोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 जिसका शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। ब्रह्मा ने अत्यंत ही सुंदर स्तुति की, उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उनको आश्वासन दिया कि आप जो ये कार्य करने के लिए मैंने आपको नियुक्त किया है वो बहुत ही सुंदर रीति से मेरी कृपा से करेंगे और आपको कोई भी अभिमान नहीं होगा क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही किया गया है। और ब्रह्मा ने जो स्तुति की उसके विषय में भगवान ने कहा, जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि भगवान समस्त वरों को देने वाले स्वामी हैं। और उसके बाद क्या हुआ आगे श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 41। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। भगवान कहते हैं, पूर्तेन तपसा यज्ञै दानै योग समाधिना राधं नि श्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतं। पूर्तेन तपसा यज्ञै दानै योग समाधिना राधं नि श्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। भगवान कहते हैं पूर्तेन अर्थात परंपरागत अच्छे कार्य द्वारा जो भी हम पूर्ति ना मतलब पुण्य कार्य करते हैं ना, वो तपस्या अर्थात तपस्या के द्वारा, यज्ञ यानी यज्ञ के द्वारा, दान यानी दान के द्वारा, योग यानी योग के द्वारा, समाधि यानी समाधि के द्वारा, यानी एक व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करता है, यज्ञ तपस्या दान समाधि और जो पुण्य कार्य करता है, राधम ऋषि निःश्रेयम पुंसाम, राधम यानी सफलता, उन सारे पुण्य कर्मों की, उन सारे यज्ञ दान तपस्या आदि जो भी हमने क्रियाएं की उनका निःश्रेयसम, निःश्रेयसम का मतलब होता है अंततोगत, उसका लाभ क्या है, पुंसाम यानी मनुष्यों के लिए, मत प्रीति तत्ववित मतम, मत प्रीति यानी वो कार्य के द्वारा भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए। यदि आप पुण्य कर्म करते हो, यदि आप दान देते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, कुछ भी करते हो, यदि उसके लाभ में, रिजल्ट में भगवान कहते मत प्रीति, मुझसे प्रीति हो रही है या मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, मुझे आप संतुष्ट कर पा रहे हो, तो वही उसका लाभ है। भगवान कहते हैं खाली मैं नहीं कहता, तत्ववित मतम, जितने भी तत्ववित हैं, दक्ष हैं, आध्यात्मवादी हैं, जो ये जानते हैं कि सारे कार्यों का लाभ क्या है, तो वो यही बताते हैं। अनुवाद देखिए, दक्ष आध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरा सत्कर्म, परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ दान, योग कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका पुण्य कार्य, जो भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, उसका चरम लक्ष्य क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते मानव समाज में अनेक परंपरागत पुण्य कर्म हैं, यथा परोपकार, उपकार, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता, दान, यज्ञ, तपस्या तथा समाधि में ध्यान, किंतु ये सब तभी लाभप्रद हो सकते हैं जब इनसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि हो। किसी भी कार्य की, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक, धार्मिक या परोपकारी संबंधी, पूर्णता भगवान को संतुष्ट करने में है। सफलता का यह रहस्य भगवत भक्तों को ज्ञात है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन द्वारा प्रस्तुत किया गया। अर्जुन एक नेक अहिंसक मनुष्य के रूप में अपने परिजनों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह यह समझ गया कि कृष्ण युद्ध चाहते हैं और कुरुक्षेत्र में इसकी योजना उन्हीं की है, तो उनसे अपनी प्रसन्नता का परित्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। श्री प्रभुपाद बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जीव जो भी कार्य करता है, अगर वो ये सोच कर कर रहा है कि इससे भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ और उसका एक ही मोटिव होता है, तभी वो कार्य की सफलता है। अन्यथा भले कितना ही लाभ मिल जाए, कितना ही धन मिल जाए, कितना ही यश मिल जाए, वो कार्य की असफलता है। जैसे अर्जुन की तो कोई इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन जब उसने देखा कि भगवान ये चाहते हैं, तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। आज हम संसार को प्रसन्न करने के लिए बहुत कार्य करते हैं, लेकिन कभी ये सोचकर कार्य करें कि मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ और कृष्ण संतुष्ट हो जाए, तो वही हमारे जीवन की सफलता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण युद्ध चाहते हैं और कुरुक्षेत्र में उसकी योजना उन्हीं की है, तो उसने अपनी प्रसन्नता का परित्याग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। आज हम देखते हैं, हम अपनी प्रसन्नता के लिए खाते हैं, पता भी है कि भगवान को ये पसंद नहीं लगता कि हम उनको भोग लगाए बगैर खाएं, लेकिन हम बाहर खाते हैं जहाँ पर कि ऐसे हाथ खाना बनाते हैं, प्रसाद मतलब जो भोजन है वो बनाते हैं, जो कि पवित्र चीज़ों के साथ अपवित्र चीज़ों का भी स्पर्श करते हैं। तो फिर भी हम सिर्फ अपनी खुशी चाहते हैं ना, भगवान के लिए तो नहीं सोचते कि भगवान को तो ये पसंद नहीं लगता। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते, सारे बुद्धिमान जनों के लिए यही उचित निर्णय है। मनुष्य को एकमात्र चिंता अपने कार्य द्वारा भगवान को संतुष्ट करने की होनी चाहिए। कोई भी कार्य करके यदि आप ये सोचते हो क्या भगवान को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो यही चिंता आपके उस कार्य को सफल करेगी। यदि भगवान किसी कार्य से चाहे वह कैसा भी हो तुष्ट हो जाए तो वह सफल है, अन्यथा यह समय का अपव्यय है मात्र है। समस्त यज्ञ तप योगिक समाधि तथा अन्य उत्तम एवं पुण्य कार्य का यही मानदंड है। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा है कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं उससे हम भगवान को संतुष्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमेशा ये देखना चाहिए। क्योंकि यदि सफलता का कोई मानदंड है तो यही है कि हमारे कार्य से भगवान प्रसन्न हो, या फिर भले कुछ भी प्राप्त हो जाए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अन्यथा यह समय का अपव्यय मात्र है। अगर भगवान को खुश नहीं किया भले कुछ भी मिल जाए, तो आपने टाइम वेस्ट करके बैठ गए हो। क्योंकि भगवान खुश नहीं हुआ तो वो आपका कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। इसके उपरांत भगवान एक बहुत ही सुंदर हम सब जीवों के लिए उपदेश देते हैं कि जीव का वास्तविक लक्ष्य तो मैं हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही उनका प्रिय हूँ। तो लोग क्यों संसार में इतना मोह रखते हैं, इतना आकर्षण रखते हैं? उन्हें तो मुझसे प्रेम करना चाहिए, मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए, संसार की किसी भी वस्तु में उनका आकर्षण नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं, अहमात्मनाम धात प्रेष्ट सन प्रेयसाम अतो मई रतिम कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रियः अहमात्मनाम धात प्रेष्टः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रियः अहम आत्मात्मनाब्धात। अहम मनी में आत्मा यानी परमात्मा, आत्मनाम मन अन्य सारी आत्माओं का धाता निर्देशक। भगवान कहते अहम आत्मा, मैं ही सब जीवों की आत्मा हूँ यानी परमात्मा हूँ। अनात्मनाम यानी अन्य सारी आत्माओं का धात यानी उनका निर्देशक हूँ, उनको उनकी सुरक्षा करने वाला, उनको संरक्षण प्रदान करने वाला, उनको निर्देश देने वाला मैं ही हूँ। प्रेष्ट और मैं ही वास्तव में प्रत्येक जीवों का प्रियतम हूँ, मेरे अतिरिक्त तो कोई चाहकर भी किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। सन यानी होकर प्रियसाम, प्रियसाम का मतलब है समस्त प्रिय वस्तुओं का, अपि निश्चय ही अतः, इसलिए जितनी भी प्रिय वस्तुएं आपको लगती हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रिय तो मैं ही हूँ। अतः मई रतिम, अतः यानी इसलिए, मई मना मेरे प्रति, रतिम मना अनुरक्त, कुरियात करें। हर किसी की यही हर किसी को करना चाहिए कि मुझसे प्रेम करें, मेरे अंदर रति रखें। दे आदि शरीर तथा मन यत कृते, जिसके कारण प्रिय, अत्यंत प्रिय। क्यों दूसरे शरीर और मन के अंदर इतना आकर्षण रखते हैं जीव, जबकि मैं ही सबका प्रिय प्रियतम भी हूँ, सबका परमात्मा भी हूँ, सबको निर्देशक भी हूँ। तो सबको चाहिए कि मुझसे प्रेम करें, मेरे प्रति अनुरक्त रखें। हनुमत भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ, मैं परम निर्देशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में परम प्रिय हैं। जब कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य हैं, तब वह जीवन की बद्ध अवस्था में होता है। और जब वह यह भली भांति जान लेता है कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य हैं, तो वो मुक्त माना जाता है। कितना आसान है स्वयं को मुक्त करना। बस संसार का प्रेम, संसार के अंदर बटे हुए प्रेम को भगवान के अंदर केंद्रित कर दो कि मेरे जीवन का एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य कृष्ण है, बस यही मुक्ति है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आती, तब तक जीव आत्मा बद्धावस्था में है, क्योंकि तब तक वो अपने आप को समझ ही नहीं पाया और वो संसार के व्यक्तियों में, वस्तुओं में प्रेम ढूंढता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, तभी वह जीवन की बद्धावस्था में होता है, फिर बस वो बंधन में है। और जब वह यह बली बांती जान लेता है कि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, तो वह मुक्त माना जाता है। भगवान के साथ अपने संबंध को जानने की कोटियां हैं जो इस अनुभूति पर निर्भर करती हैं कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के सर्वप्रिय लक्ष्य क्यों हैं। अलग अलग कोटियां हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि भगवान ही प्रत्येक जीव के सर्वप्रिय लक्ष्य हैं। असली कारण श्रीमद् भगवद गीता 15.7 में स्पष्ट बताया गया है। भगवान कहते हैं, मम इवांश जीवलोके जीवभूता सनातना। सारे जीव मेरे नित्य भिन्न अंश हैं। जीव आत्मा कहलाता है और भगवान परमात्मा। जीव ब्रह्म कहलाता है और भगवान परब्रह्म या परमेश्वर, ईश्वर परम कृष्ण। जिन बद्ध आत्माओं को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो वे भौतिक देह को ही सर्वप्रिय मानते हैं। तब सर्वप्रियंता का विचार केंद्रीभूत तथा विस्तृत दोनों रूपों में सारे शरीर में फैल जाता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान को ही क्यों अपना चरम प्रिय परम प्रिय लक्ष्य माना जाए, क्योंकि हमारा संबंध और किसी से है ही नहीं। ये भौतिक शरीर तो हम हैं नहीं, जितने भी दूसरे संबंध हैं वो तो इस भौतिक शरीर के हैं। वो तो हमें केवल इसलिए मिला है ताकि इस भौतिक शरीर में कुछ ऐसे कार्य करें कि अपने परम प्रिय भगवान से बिछड़े हुए हम पुनः उन्हीं से मिल जाएं। तो ये भौतिक शरीर इसलिए थोड़ी मिला है कि हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसने के जैसे दूसरे कार्य करें। ये तो इसीलिए मिला है ना कि हम भगवान को प्राप्त करें। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो अंश तब तक संतुष्ट हो ही नहीं सकता है जब तक कि अपने स्रोत से जाकर मिलता नहीं है। इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम आत्मा हैं तो भगवान परमात्मा है, जी ब्रह्म है तो भगवान परब्रह्म है। तो हम संसार में रहते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक गंतव्य कृष्ण है, जिन बद आत्माओं को आत्म साक्षात्कार नहीं होता तो वे भौतिक देह को ही सर्वप्रिय मानते हैं। वो सोचते हैं कि यही भौतिक देह ही सर्वप्रिय है और इसी को आनंदित करने के लिए जन्म लिया है। तब सर्वप्रियंता का विचार केंद्रीभूत तथा विस्तृत दोनों रूपों में सारे शरीर में फैल जाता है। अपने शरीर तथा इसके विस्तारों तथा संतानों तथा संबंधियों के प्रति अनुरक्ति विस्तृत वस्तुतः असली जीव के आधार पर विकसित होती है। जब असली जीव शरीर से बाहर चला जाता है तो सर्वप्रिय पुत्र तक का शरीर आकर्षक नहीं लगता। जैसे श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमको याद नहीं रहता कि हम भगवान के अंश हैं, तो हमारी जो सर्वप्रियता जो है वो केंद्रित और विस्तृत दोनों रूपों में सारे शरीर में फैल जाती है। केंद्रित मतलब कुछ लोग केवल अपने आप से प्रेम करते हैं, कुछ केवल अपनी फैमिली से प्रेम करते हैं, कुछ अपने परिवार से प्रेम करते हैं, कुछ अपने देश और राष्ट्र से प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ भी हो आप किसी से भी प्रेम करते हो, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय हो, आप उससे तभी तक प्रेम करोगे जब तक कि उसके अंदर भगवान का अंश, भगवान अंश रूप में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। असली जीव के आधार पर विकसित होता है। असली जीव मतलब परमात्मा जब तक आपके अंदर नहीं है ना, तब तक आप उससे प्रेम नहीं करोगे। जब असली जीव शरीर से बाहर चला जाता है तो सर्वप्रिय पुत्र तक का शरीर आकर्षित नहीं लगता। फिर थोड़ी ना उसको बिठाएंगे, प्रेम करेंगे, उसके साथ रहेंगे क्या, जिसके अंदर से परमात्मा निकल गया है। अतएव सजीव सफुलिंग या ब्रह्म का नित्य अंश स्नेह का असली आधार होता है। ब्रह्म का नित्य अंश, ये जो परमात्मा भगवान परमात्मा के स्वरूप में हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए ना, वही हमारे प्रेम का असली आधार है, शरीर नहीं। क्योंकि सारे जीव भी सर्वोपरि पुरुष का अंश है, अतः वे परम पुरुष सबों के स्नेह के वास्तविक आधार हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के लिए अपने प्रेम के मूलभूत सिद्धांत को भूल जाता है, उसमें केवल टिमटिमाता प्रेम होता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत बता रहे हैं, सुंदर बातें यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। अतः वे परम पुरुष सबों के स्नेह के वास्तविक आधार हैं। हमारे प्रेम का असली आधार है, किसी से भी हम प्रेम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, लेकिन परमात्मा के अतिरिक्त किसी और से प्रेम किया ही नहीं जा सकता। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के लिए अपने प्रेम के मूलभूत सिद्धांत को भूल जाता है, संसार से वस्तुओं में आकर्षित होते हैं या व्यक्तियों में आकर्षित होते हैं और ये भूल जाते हैं कि वास्तव में प्रेम भगवान के लिए है, तो केवल टिमटिमाता हुआ प्रेम होता है, प्रेम खत्म हो जाए, क्योंकि यह मायाग्रस्त होता है। जो माया के सिद्धांत से जितना ही अधिक प्रभावित होता है, वह प्रेम के मूलभूत सिद्धांत से उतना ही विरक्त होता है। जितना माया आकर्षित करती है ना, माया के आकर्षण का एक सबसे बड़ा प्रलोभन क्या है कि वो आपकी रियलिटी को भुला देती है। माया मतलब जो आप नहीं हो ना, वो आपको याद कराती है, ये संसार, ये भौतिक शरीर, ये भौतिक शरीर के संबंध, भौतिक शरीर के द्वारा वस्तु और व्यक्तियों का आकर्षण, ये सब माया है। और जितना जितना हम माया से प्रभाव होते हैं, उतना उतना हम भगवान से दूर होते जाते हैं। इसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो माया के सिद्धांत से जितना ही अधिक प्रभावित होता है, वह प्रेम के मूलभूत सिद्धांत से उतना ही विरक्त हो जाता है, भगवान को भूलता जाता है और सोचता है कि संसार के व्यक्ति और वस्तुओं से प्रेम करके आनंदित हो जाएगा। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में पूर्णतया विकसित नहीं होता, तब तक वास्तव में वह किसी वस्तु से प्रेम नहीं कर सकता। कितना श्रीला प्रभुपाद जी गंभीर बात बता रहे हैं कि कृष्ण से प्रेम नहीं करते तो तुम किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते हो। जब तक कृष्ण पूर्णतया कृष्ण प्रेम विकसित नहीं हो जाएगा ना, फिर किसी वस्तु इसे प्रेम किया ही नहीं जा सकता। भगवान की प्रेमा भक्ति में पूर्णतया विकसित नहीं होता तब तक वास्तव में वह किसी वस्तु से प्रेम नहीं कर सकता। प्रस्तुत श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर प्रेम को केंद्रित करने पर बल दिया गया है। यहाँ पर कुरियात शब्द सार्थक है। इसका अर्थ है मनुष्य इसे प्राप्त करें। यह इस बात पर बल देने के लिए है कि हमें प्रेम के सिद्धांत के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त होना चाहिए। माया का प्रभाव आध्यात्मिक जीव के अंश द्वारा अनुभव किया जाता है, किंतु यह माया परमात्मा पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्लोक में यही बताया गया है कि हमें अपने प्रेम को भगवान के ऊपर केंद्रित करना है। भगवान कहते हैं अतो मई रतिम कुरियात, तो मेरे से प्रेम करो, मेरे एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए ना, दूसरों की ओर क्यों होते हो? क्योंकि आपके प्रेम का वास्तविक आधार तो मैं ही हूँ। जब तक मैं उसके अंदर बैठा हूँ तब तक ही तुम उससे प्रेम करोगे। मैं निकल गया तो करके दिखाओ किसी से प्रेम को। ऐसा व्यक्ति जिसे तुम समझते हो कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, उससे मैं निकल जाऊँ तो क्या तुम उसके साथ रह सकोगे? नहीं, तो फिर तुम्हें मेरे से प्रेम करना चाहिए डायरेक्ट से। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर प्रेम को केंद्रित करने पर बल दिया गया। यहाँ पर कुरियात शब्द सार्थक है। भगवान ने कहा है ना कुरियात, कि आपको मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। अतो मई रतिम कुरियात, तो ये इसका अर्थ है मुझसे प्रेम करो, मुझसे मनुष्य इससे प्राप्त करे। इस बात पर बल देने के लिए है कि हमें प्रेम के सिद्धांत का को के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त होना चाहिए। भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान से कभी भी हमको दूर रहना नहीं चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो माया का प्रभाव आध्यात्मिक जीव के अंश द्वारा अनुभव किया जाता है। जो जीव है ना हम जैसे, वो तो उसके ऊपर तो माया कभी कभी आक्रमण कर लेती है, लेकिन माया परमात्मा पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। भगवान पर वो अपना प्रभाव जमा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान तो माया के स्वामी हैं। इसे अगर हम भी भगवान की शरण में आ जाएंगे तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इसलिए भगवान कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे, क्योंकि माया भगवान की दासी है। तो दासी को जब भगवान ऑर्डर करेंगे ए माया चलो, इस ये मेरा भक्त है, मेरी शरण में आया, खबरदार इस पर कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करना, तो फिर हम भी माया के प्रभाव से बच जाएंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते मायावादी दार्शनिक जीव पर माया के प्रभाव को स्वीकार करके परमात्मा के साथ तदाकार होना चाहते हैं, किंतु परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम न होने से वे माया के प्रभाव द्वारा सदैव पाशबद्ध रहते हैं और परमात्मा के निकट पहुंच पाने में अक्षम रहते हैं। अब ये कि जब तक भगवान ने कहा जब तक मुझसे प्रेम नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं, तो भगवान को प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि हम भगवान से प्रेम करें। मायावादी दार्शनिक जो होते हैं वो माया से भयभीत होते हैं, माया से छूटना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भगवान, उनको भगवान से कोई प्रेम नहीं होता, किंतु तो वो क्या चाहते हैं हम भगवान में मिलकर एक हो जाएं। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी दार्शनिक जीव पर माया के प्रभाव को स्वीकार करके परमात्मा के साथ तदाकार होना चाहते हैं कि नहीं भाई माया तो आक्रमण करती है, अब हम साधना करें, भगवान से प्यार नहीं करते हैं और भगवान के अंदर जाकर एक होना चाहते हैं, किंतु परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम न होने से वे माया के प्रभाव द्वारा सदैव पाश बंद रहते हैं। तो माया छोड़ेगी थोड़े, माया को माया के जाल से छूटने का एक ही तरीका है, भगवान की शरण में जाओ, भगवान से प्रेम करो। भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो माया छोड़ेगी क्या? इसीलिए वे सदैव पाश बंद रहते हैं और परमात्मा के निकट पहुंच पाने में अक्षम रहते हैं। फिर भगवान के पास कैसे जाएंगे जब माया उनको जकड़े रखेगी? तो यह अक्षमता परमात्मा के प्रति अनेक उनके स्नेह के अभाव के कारण होती है, क्योंकि भगवान से प्यार नहीं करते इसलिए माया को पार नहीं करते। धनी कंजूस ये नहीं जानता कि वह अपनी संपत्ति का किस तरह उपयोग करे, अतएव अत्यंत धनी होते हुए भी उसका कंजूस स्वभाव उसे सदैव निर्धन व्यक्ति बनाए रखता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो यह जानता है कि धन का किस तरह उपयोग किया जाए, थोड़ी पूंजी होने पर भी तुरंत धनी बन जाता है। तो ये तो बहुत सुंदर और एकदम सरल एग्जाम्पल है कि किसी के पास बहुत सारा धन हो लेकिन उसे पता ही नहीं है कि किस तरह जीना है, कैसे अपने इस धन से लाभ लेना है, कैसे संतों की सेवा करनी है, मंदिर बनवाने हैं, दान करना है, भक्तों को प्रसादम की व्यवस्था करनी है, बुक प्रिंट करवाने हैं, ये सब चीज़ें नहीं पता उसको। तो फिर वो उसका जो धन है उसका होना या ना होना लाभदायक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास धन थोड़ा होता है लेकिन उन्हें दान करना आता है, वो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, वो मंदिरों में दान देते हैं, वो भक्तों की सेवा करते हैं, तो फिर वो उनसे ज़्यादा तुरंत धनी बन जाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा भी होती है। तो आँखों तथा सूर्य में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सूर्य प्रकाश के बिना आँखें देख नहीं सकती, किंतु शरीर के अन्य भाग क्योंकि वे उष्मा के स्रोत के रूप में सूर्य से जुड़े होते हैं, आँखों की उपेक्षा सूर्य का अधिक लाभ उठाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आँखें तब तक नहीं देख सकती जब तक सूर्य प्रकाश ना हो, यानी उसको कोई प्रकाश का केंद्र, कहीं पर सूर्य प्रकाश ना हो, लाइट इलेक्ट्रिसिटी ना हो, आँखें होते हुए भी हम नहीं देख सकेंगे। तो आँखों और सूर्य प्रकाश का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सूर्य प्रकाश के बिना आँखें देख नहीं सकती, लेकिन शरीर के अन्य भाग क्योंकि वे उष्मा के स्रोत के रूप में सूर्य से जुड़े होते हैं, आँखों की उपेक्षा सूर्य का अधिक लाभ उठाते हैं। सूर्य के प्रति स्नेह से युक्त हुए बिना आँखें सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सकती, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसी आँखों में सूर्य की किरणों की उपयोगिता को समझ पाने की क्षमता नहीं होती। अब श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे हैं। वे कहते हैं सूर्य के प्रति स्नेह से युक्त हुए बिना आंखें सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सकती, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसी आंखों में सूर्य की किरणों की उपयोगिता को समझ पाने की क्षमता नहीं होती। अब जब तक हम सूर्य से प्रेम नहीं करेंगे ना, तो हम सूर्य की रोशनी को भी ना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सकेंगे। और यदि कोई सूर्य की उपासना करता है, सूर्य से प्रेम करता है, तब तो वो सूर्य लोक में भी जा सकता है, फिर तब भी सूर्य से क्योंकि प्रेम है उसको, तो वो सूर्य को स्वीकार करता है, उसको सहन भी कर सकता है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य के प्रति सहन स्नेह से युक्त हुए बिना आंखें सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सकती, अथवा दूसरे शब्दों में ऐसी आंखों में सूर्य की किरणों की उपयोगिता को समझ पाने की क्षमता नहीं। इसी प्रकार से अनुभाविक दार्शनिक ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान होने के बावजूद परब्रह्म की कृपा का उपयोग नहीं कर पाते, चाहे वो कितने बड़े फिलोसोफर हों, चाहे वो कितने बड़े सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने वाले हों, भगवान की कृपा तब तक उनको नहीं मिलेगी जब तक वो भगवान की प्रेम भक्ति नहीं करेंगे, वो परब्रह्म की कृपा का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें स्नेह का अभाव है। भगवान से प्यार नहीं करते तो भगवान उनमें कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। अतः अनेक निर्विशेषवादी दार्शनिक जन ब्रह्म का सैद्धांतिक ज्ञान रखने के बावजूद भी सदा के लिए माया के वशीभूत रहते हैं और वे ब्रह्म के प्रति स्नेह को उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही उनमें स्नेह उत्पन्न होने की कोई संभावना रहती है, क्योंकि प्रेम करते नहीं हैं और प्रेमियों के साथ जो भगवान के भक्त होते हैं उनके साथ कभी संपर्क ही नहीं करते, तो उनके अंदर भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न होने की कोई संभावना भी नहीं होती है, क्योंकि उनकी विधि दोषपूर्ण होती है। वो भगवान के साथ प्रेम नहीं करते लेकिन भगवान के अंदर तदात्मय होना चाहते हैं। सूर्य देव का भक्त दृष्टिहीन होते हुए भी इस लोक से सूर्य देव को उनके यथारूप में देख सकता है। देखो कितना ये भक्ति का कितना प्रभाव है कि अगर सूर्य देव का भक्त अंधा भी हो तो भी इस लोक से सूर्य देव को उनके यथारूप में देख सकता है, किंतु जो सूर्य का भक्त नहीं है वह सूर्य की चमक को भी सहन नहीं कर सकता। उसी तरह भक्ति योग के द्वारा कोई व्यक्ति ज्ञानी के स्तर पर ना होते हुए भी शुद्ध प्रेम के विकास के कारण अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकता है। यहाँ अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो प्रेम जो है वो शुद्ध प्रेम भगवान के दर्शन कराने के लिए सक्षम है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि भाई जब तक तुम बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बन जाओगे, जब तक तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बन जाओगे तब तक तुमको मुझसे प्रेम करने का अधिकार नहीं। भगवान तो कहते कोई भी, या पीछे सुदुराचार वजते माम, कोई दुराचारी भी मुझसे प्रेम कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि इसी तरह भक्ति योग के द्वारा कोई व्यक्ति ज्ञानी के स्तर पर ना होते हुए भी शुद्ध प्रेम के विकास के कारण अपने भीतर भगवान के दर्शन कर सकता है। मनुष्य को सभी परिस्थितियों में भगवत प्रेम विकसित करने का प्रयास करना चाहिए और इससे समस्त जटिल समस्याएं हल हो जाएंगी। बस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। जैसे हम हर रोज कथा, भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सभी परिस्थितियों में भगवत प्रेम विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, उसका लक्ष्य केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है और उसके लिए प्रयास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और इस प्रयास से ही सारी समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगी। कृष्ण प्रेम जब प्राप्त होगा तब तो समस्या का कुछ होगा ही नहीं, तब तो कृष्ण के प्रति प्रेम जब प्राप्त हो जाएगा फिर तो केवल आनंद होगा, फिर तो केवल कृष्ण का सानिध्य होगा। लेकिन उस प्रेम के प्रयास में इश्क का एहसास भी इबादत से कम नहीं। ये खाली एहसास हो जाए हमको कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं या हम कृष्ण से प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ना, बस ये एहसास भी हमें हमारी सारी जटिल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए वो सहारा देगा। वो एहसास हमारा हमें आधार बन जाएगा जीवन को आनंद से बिताने के लिए। इसलिए कृष्ण प्रेम मिलता है, कब मिलता है उसका मत सोचिए, बस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करते रहिए। आगे भगवान कहते हैं सर्ववेद मयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिनां प्रजास्रज यथा पूर्वम् याश्च मय्यनुशेरते। सर्ववेदमयीनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना प्रजासृज यथा पूर्वम् याश्च मय्यनुरे याश्च मय्यनुशीरते सर्ववेदमयीनेदम् सर्वमन सारे समस्त वेदमयेन अर्थात पूर्ण वैदिक ज्ञान के अधीन इदम् यानी यह आत्मना आत्मा आत्मा योनिना आत्मना यानी शरीर द्वारा आत्मा यानी तुम आत्म योनिना यानी सीधे भगवान से उत्पन्न। अब देखो ये जो आत्मना आत्म आत्मा योनिना ये जो है ना वो अलग 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 वस्तु के लिए यूज़ होते हैं आत्मना आत्मा आत्मयोनिना। तो ये कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है जो शुद्ध वैष्णव होते हैं ना जो टीका करते हैं वो कॉन्टेक्स्ट में देख के बोलते हैं कि इस श्लोक में आत्मा का मतलब अभी देखो आत्मना का मतलब है शरीर द्वारा और आत्मा का मतलब है तुम। हालांकि आत्मा का मतलब तो जीव होता है वे आत्मयोनिना यानी भगवान से उत्पन्न। तो ये कॉन्टेक्स्ट में देख के पता चलता है। प्रजा सृज यथा पूर्वम प्रजा मना संसार या जीव सृज उत्पन्न करो यथा पूर्वम यानी पहले की तरह याश्च मई अनुशेरते या यानी जो च भी मई यानी मुझ में अनुशेरते यानी स्थित हैं। तो यहाँ भगवान ब्रह्मा जी को अंतिम आदेश देते हैं कि मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्व वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप में मुझसे प्राप्त हो अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे दिया और संपूर्ण ज्ञान भी प्रदान कर दिया सर्ववेदमयीनेदम् मैंने आपको पूर्ण वैदिक ज्ञान भी प्रदान कर दिया अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर दिया और शरीर कैसा है तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर जो भगवान समस्त कारणों के कारण हैं उन्होंने ब्रह्मा जी को शरीर भी प्रदान कर दिया। अब भगवान उनको कहते हैं कि अब इसके द्वारा आपको संसार की उत्पत्ति करनी है प्रजा सृज यथा पूर्वम जैसे पहले प्रजा की उत्पत्ति की थी अब आपको वापस से करना है। अब मैत्रेय जी बोलते हैं मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत् सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वर व्यच्येदं स्वेन रूपेण कञ्जना बस्तिरोधते तस्मा एवं जगत् सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वर व्यच्येदं स्वेन रूपेण कञ्जना बस्तिरोधते तस्मा एवं जगत् सृष्टे। मैत्री जी ने कहा तस्मा मन उससे एवं इस प्रकार जगत यानी यह संसार सृष्टि यानी ब्रह्मांड की सृष्टा के प्रति प्रधान पुरुषेश्वर प्रधान पुरुषेश्वर मतलब आदि भगवान व्यच येदम स्वेन रूपेण व्यच्येदम यानी यह आदेश देकर स्वेन अपने रूपेण यानी स्वरूप द्वारा कंजना भस्ति रोधते कंजनाभ यानी भगवान नारायण तिरोधदे मना भगवान अंतर ध्यान हो गए ये इस तरह से उन्होंने उनको आदेश दिया और उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। अनुवाद देखिए तस्मात एवं जगत सृष्टि प्रधान पुरुषेश्वर व्यजीदं स्वेन रूपेण कंजनाभस्तिरोधते। मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्धान हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मांड का सृजन कार्य करने के पूर्व ब्रह्मा ने भगवान के दर्शन किए। चतुश्लोकी भागवत की यही व्याख्या है। जब सृजन ब्रह्मा के कार्य की प्रतीक्षा में था तो ब्रह्मा ने भगवान को देखा। अतः भगवान सृष्टि के पूर्व अपने साकार रूप में विद्यमान थे। सबसे पहली बात यहाँ पर जो बहुत खास है वो ये है कि ब्रह्मा जी ने संसार को सृजन करने से पहले भगवान के साकार स्वरूप में दर्शन किए। इसका मतलब ये कि भगवान निराकार नहीं है। अतः भगवान सृष्टि के पूर्व अपने साकार रूप में विद्यमान थे। भगवान का कुछ स्वरूप होगा तब तो देखा होगा ना ब्रह्मा जी ने। और उनका नित्य रूप ब्रह्मा के प्रयास से सृजित नहीं हुआ, जैसा कि अल्पज्ञों की कल्पना है। भगवान का नित्य रूप है, ऐसा नहीं ब्रह्मा जी ने उसको सृजन किया है। नहीं, ब्रह्मा जी के सृजन शक्ति प्रदान करने वाला भगवान का स्वरूप है और वो नित्य है। वो कभी भी प्रकट या अप्रकट नहीं होता है, मतलब वो तो नित्य ऐसे का ऐसा रहता है। हमारी दृष्टि में वो नहीं दिखता है, लेकिन भगवान का स्वरूप तो नित्य है। तो भगवान अपने यथारूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए और उसी रूप में उनके सामने से अदृश्य हो गए। यह रूप भौतिकता से कुलुषित नहीं हो। अब यहाँ पर साफ साफ बताया है कंजनाभस्तिरोधते के वो जो कमल नाभि, कंजनाभि का मतलब क्या है कि भगवान नारायण जिनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है। तिरोधदे मतलब वो अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान मतलब कुछ तो दिखा होगा फिर तो अंतर ध्यान हुआ ना। और जो अगर कुछ दिखा है वो भगवान का स्वरूप है। अगर वो स्वरूप दिखा है तो इसका मतलब है भगवान निराकार नहीं है। तो भगवान अपने यथारूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए और उसी रूप में उनके सामने अदृश्य हो गए। यह रूप भौतिकता के से कलुषित नहीं है, ये आध्यात्मिक स्वरूप है। भगवान अपने स्वरूप को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करते। भगवान ने कहा 7.25 में, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ, योग माया के द्वारा मैं अपने आप को आवृत कर देता हूँ। लेकिन भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, क्योंकि भक्त भगवान से बहुत प्रेम करते हैं तो भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। इसी भगवान का स्वरूप है जो अल्पज्ञ हैं, जो मूर्ख हैं, जो कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा जी पहले जीव हैं और जैसे ही उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान सामने प्रकट हुए, इतना सुंदर आदेश दिया, इतनी सुंदर भगवान की स्तुति की ब्रह्मा जी ने। और भगवान ने पूरा ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपका साथ दूंगा और तुम आप सृजन करो। तो ब्रह्मा जी कितना आनंदित हुए। और ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के बाद, सांत्वना देने के बाद भगवान पुनः अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा के द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।